नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 6 मई 2022 के साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। यूक्रेन में आम जन की रक्षा और विशाल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहत प्रयासों में तेजी। पिछले 2 सालों में कोविड-19 के कारण विश्व भर में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया विश्लेषण। यूरोपीय देशों में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है मोटापे की समस्या। और कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच आपसी समझौतों व संवाद से हुई रोजगारों की रक्षा, बनी रही कामकाज की निरंतरता। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए दोहराया कि यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया की भलाई के लिए जरूरी है कि युद्ध को रोका जाए। यूएन प्रमुख पिछले सप्ताह रूस और यूक्रेन के दौरे पर थे और उन्होंने बताया कि दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण उसकी क्षेत्रीय अखंडता और यूएन चार्टर का उल्लंघन है।
The cycle of death, destruction, dislocation and disruption must stop. It is high time to unite and end this war.
महासचिव गुटेरेश सदस्य देशों को मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए बता रहे थे कि मौत, विध्वंस, विस्थापन और व्यवधान के इस चक्र पर विराम लगाया जाना होगा। ये समय एकजुट होने और युद्ध का अंत करने का है। वहीं मानवीय राहत मामलों के लिए यूएन अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने अपने संबोधन में क्षोभ व्यक्त किया कि बड़े पैमाने पर नागरिक प्रतिष्ठान की बर्बादी हुई है, विशाल जरूरतें उत्पन्न हुई हैं और 1.3 करोड़ यूक्रेनी नागरिक अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से लिंग आधारित हिंसा का खतरा बढ़ा है और लोगों, विशेष रूप से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भीषण असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशिलेट ने यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण और मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के मामलों पर चिंता जताई और जवाबदेही तय किए जाने पर जोर दिया।
The mission continues to verify allegations of violations of international human rights law and of international humanitarian law in the context of the Russian Federation's armed attack on Ukraine.
मानवाधिकार उच्चायुक्त बता रही थी कि यूक्रेन पर रूसी महासंघ के सशस्त्र हमले के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून के हनन के आरोपों की पुष्टि की जा रही है और ऐसे अनेक मामलों को युद्धापराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच यूक्रेन में घेराबंदी वाले इलाकों, विशेष रूप से बंदरगाह शहर मारियोपोल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहां एक स्टील प्लांट पे पिछले कई हफ्तों से बड़ी संख्या में आमजन भूमिगत स्थल में रहने के लिए मजबूर हैं। यूएन प्रमुख ने रूस और यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात के दौरान इस विषय पर बात की थी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षित निकासी पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी। इसके बाद ही मारियोपोल में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने का अभियान शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
राजनीतिक और सुरक्षा मायनों में बेहद जटिल इस मानवीय अभियान का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस साथ मिलकर कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी के ये प्रयास रूसी संघ और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद 29 अप्रैल को शुरू हुए। अब तक 2 काफिलों की सुरक्षित निकासी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले मारियोपोल के एजोवस्टाल स्टील प्लांट में फंसे लोगों की सुरक्षित निकासी प्रयासों को मूर्त रूप दिया गया, जिसमें 101 महिलाओं, पुरुषों, बच्चों व बुजुर्गों को एजोवस्टाल स्टील प्लांट में बंकरों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा 59 अन्य लोग मारियोपोल के बाहरी इलाके में स्थित मानहुश नगर से काफिले में शामिल हुए। मौके पर मौजूद यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष सहायता अधिकारी ओस्नात लुब्रानी ने भरोसा दिलाया कि वहां फंसे अन्य लोगों की सहायता और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जाने के प्रयास जारी रहेंगे। हम सभी पक्षों से बातचीत जारी रखेंगे और अगर हमें अंदर जाने का कोई भी अवसर मिलता है तो हम योजना के तहत जल्दी से जल्दी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने जाएंगे। हम चिंतित हैं क्योंकि हमें पता चला है कि प्लांट पर गोलाबारी फिर शुरू हो गई है। तो हम सभी पक्षों से संवाद करने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, केवल मारियूपोल से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के उन सभी हिस्सों से जहां लोगों पर आक्रमण हो रहा है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष सहायता अधिकारी ओस्ना अतलुब्रानी के शब्द। इसके बाद दूसरे ऑपरेशन में 320 से अधिक नागरिकों को मारियूपोल शहर और आसपास के इलाकों से निकाला गया। एक तीसरे राहत अभियान को भी आगे बढ़ाया गया है। आगमन केंद्रों पर पहुंचाने वाले अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के साथ अन्य प्रकार की सहायता मुहैया कराई जा रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 महामारी के सिलसिले में नए आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार वैश्विक महामारी की वजह से पिछले साल के अंत तक सीधे तौर पर या बीमारी से उपजी अन्य वजहों से लगभग 1,49,00,000 लोगों की मौत हुई। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक्सेसिव मोर्टैलिटी यानी अतिरिक्त मृतक संख्या की गणना की है। कुल मृतकों की संख्या और महामारी न फैलने की स्थिति में होने वाली मौतों के बीच के अंतर को मापा गया है। मृतक संख्या 1,33,00,000 से 1,66,00,000 के बीच होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी में सहायक महानिदेशक डॉक्टर समीरा आसमा ने बताया,
एक्सेस डेथ्स इंक्लूड डेथ्स डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू कोविड-19। What we released today is a staggering number of 14.9 million excess deaths since the start of the pandemic.
डॉक्टर समीरा आसमा कह रही थी कि अतिरिक्त मृतक संख्या में कोविड 19 के दौरान प्रत्यक्ष व परोक्ष वजहों से होने वाली मौतें हैं। आज जो विश्लेषण जारी किया गया है वो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि पर आधारित है और महामारी शुरू होने के बाद के 24 महीनों में 1,49,00,000 मौतें बताता है। यानी अब तक जितनी मौतों की पुष्टि हो चुकी है उससे 95,00,000 अतिरिक्त लोगों की मौत। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु या तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई या फिर महामारी के कारण स्वास्थ्य प्रणालियों, स्थानीय समुदायों और सेवाओं पर हुए असर की वजह से परोक्ष वजहों से हुई, जैसे पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे वो लोग जिन्हें समय से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाई। विश्लेषण के अनुसार सर्वाधिक अतिरिक्त मौतें दक्षिण पूर्व एशिया में हुई हैं, जिसके बाद यूरोप और अमेरिकी क्षेत्र हैं। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत ज्यादा संख्या में हुई है। महिलाओं के लिए आंकड़ा 43% और पुरुषों के लिए 57% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि यूरोपीय क्षेत्र में मोटापे की दर एक महामारी के तौर पर आकार ले चुकी है और इसका बढ़ना अब भी जारी है। पूरे विवरण के साथ अंशु शर्मा।
नए अध्ययन के अनुसार लगभग 2/3 वयस्कों और करीब हर 3 में से एक बच्चे का वजन या तो अधिक है या फिर उन्हें मोटापा है। लंबे समय तक वजन अधिक रहना या मोटापा यूरोप में होने वाली मौतों और विकलांगता के मुख्य कारणों में से है। अनुमान दर्शाते हैं कि इन वजहों से हर वर्ष 12,00,000 से अधिक लोगों की मौत होती है, यानी क्षेत्र में कुल मौतों का 13% से अधिक। मोटापे से गैर संचारी रोगों का जोखिम भी बढ़ जाता है, जिनमें 13 प्रकार के कैंसर, हृदय व रक्तवाहिका संबंधी बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज हैं। ऐसी संभावना जताई गई है कि मोटापा क्षेत्र में हर वर्ष कैंसर के कम से कम 2,00,000 नए मामलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। संगठन ने बताया कि मोटापे वाले मरीजों में कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य जटिलताओं का शिकार होने और मौत होने की संभावना अधिक है। रिपोर्ट में अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर ज्यादा कर लगाए जाने, स्वस्थ भोजन के लिए सब्सिडी देने, अस्वस्थ खाद्य वस्तुओं की बच्चों तक मार्केटिंग पर नियंत्रण करने और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मोटापा प्रबंधन सेवाओं की सुलभता को बेहतर बनाना शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि कोविड 19 की पृष्ठभूमि में कामकाजी दुनिया में तेजी से बदलाव आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संवाद और सामूहिक समझौते बेहद अहम हैं। यूएन श्रम एजेंसी की सोशल डायलॉग रिपोर्ट दर्शाती है कि कोविड 19 के प्रकोप के दौरान आपसी बातचीत और समझौतों से रोजगारों की रक्षा करने में मदद मिली है। ऐसे समझौतों और संवादों से लाखों करोड़ों कर्मचारियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर किया गया। उन्हें बीमारी के दौरान वेतन के साथ अवकाश दिए जाने और अन्य प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान किए गए। कामकाजी परिस्थितियों में लचीली व्यवस्था और छुट्टी के प्रावधान का भी ध्यान रखा गया ताकि कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपने कामकाज के अलावा अन्य अतिरिक्त देखभाल जिम्मेदारियों को निभाना संभव हो सके, जैसे महामारी के दौरान स्कूलों में तालाबंदी होने से बच्चों की देखरेख करना या फिर किसी बीमार परिजन की देखभाल। अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को या तो बढ़ा दिया गया या फिर उन्हें स्थायी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया गया ताकि वे अपना रोजगार और कमाई जारी रख सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।